आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम का विषय है शंघाई सहयोग संगठन 25 वर्षों की यात्रा और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका। एशिया और यूरेशिया के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO आज एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच बन चुका है। आज SCO के 10 सदस्य हैं। इनका संयुक्त क्षेत्रफल करीब 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी 3,40,00,000,000 से अधिक है। संगठन के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 25% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 15% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन SCO की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है। इस संगठन की शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों से हुई थी। धीरे धीरे इसका दायरा सुरक्षा से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था, व्यापार, संपर्क, संस्कृति, ऊर्जा, पर्यावरण, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क तक पहुंचा। और आज जब SCO अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित हो रहा है। भारत भी इस शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सुरक्षा, संपर्क तथा अवसरों से जुड़े भारत के प्राथमिकता वाले मुद्दों को सामने रखेंगे। तो आखिर SCO की शुरुआत कैसे हुई, पिछले 25 वर्षों में ये संगठन किस तरह बदला और इसमें भारत की भूमिका किस तरह विकसित हुई, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
शंघाई सहयोग संगठन की कहानी को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में वापस जाना होगा। उस समय चीन और उसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में विश्वास बढ़ाना और सैन्य तनाव कम करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से वर्ष 1996 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस और ताजिकिस्तान ने सीमा क्षेत्र में सैन्य विश्वास निर्माण से जुड़ा समझौता किया। इसके बाद 1997 में सीमा क्षेत्र में सशस्त्र बलों की पारस्परिक कमी से संबंधित समझौता हुआ। इन 5 देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की व्यवस्था को शंघाई 5 कहा गया। फिर 4 जुलाई 2000 को दुशांबे घोषणा में शंघाई 5 को विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग की एक व्यापक क्षेत्रीय संरचना में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी दौरान उज्बेकिस्तान भी इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और इसके ठीक एक साल बाद आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने इस पूरी प्रक्रिया को एक नए संगठन का रूप दिया। 15 जून 2001 चीन के शंघाई शहर में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की स्थापना की घोषणा की। संगठन ने स्पष्ट किया कि वो किसी दूसरे देश या क्षेत्र के खिलाफ बनाया गया सैन्य गठबंधन नहीं है। इसके बजाय ये खुलेपन, संवाद और विभिन्न देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के सिद्धांत पर काम करेगा। इसके बाद SCO के संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया। 7 जून 2002 को सेंट पीटर्सबर्ग में SCO चार्टर पर हस्ताक्षर हुए जो संगठन का मूलभूत दस्तावेज है। ये 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यहीं से SCO की यात्रा एक सुरक्षा केंद्रित समूह से एक व्यापक बहुपक्षीय संगठन की ओर बढ़ने लगी।
SCO की स्थापना के शुरुआती वर्षों में सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता प्रमुख विषय रहे, लेकिन समय के साथ संगठन ने आर्थिक और मानवीय सहयोग को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। 2004 में स्थायी संस्थाओं के गठन के बाद 2005 का अस्ताना शिखर सम्मेलन भी संगठन के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
एससीओ के विकास की कहानी कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों से होकर गुजरती है। 2005 का अस्थाना शिखर सम्मेलन इस विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उस समय तक एससीओ सेक्रेटेरिएट और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी RATS काम कर रहे थे और संगठन अपने बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। समय के साथ एससीओ में आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग की व्यवस्थाएं विकसित हुई। एससीओ की संस्थागत संरचना में राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के अलावा सरकार प्रमुखों यानी प्रधानमंत्रियों की परिषद, विदेश मंत्रियों की परिषद, राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद और विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों की बैठकें शामिल है। यानी एससीओ केवल सालाना शिखर सम्मेलन तक सीमित संगठन नहीं है, इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बैठकें और कार्यतंत्र चलते हैं। जून 2017 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में भारत को संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। भारत के प्रवेश के बाद एससीओ का भौगोलिक और राजनीतिक दायरा काफी बढ़ गया। इसके बाद संगठन के एजेंडे में मध्य एशिया के साथ साथ दक्षिण एशिया से जुड़े मुद्दों की प्रासंगिकता भी बढ़ी। 2023 में ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बना, जबकि बेलारूस को पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और 2024 में बेलारूस संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया। एससीओ अब केवल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का मंच नहीं है, ये विभिन्न स्तरों पर निरंतर संवाद और सहयोग की एक संस्थागत व्यवस्था बन चुका है। और इसी क्रम में 2025 का तियानजिन शिखर सम्मेलन भी महत्वपूर्ण रहा। चीन की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन में राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उद्योग, सतत विकास और नई तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सम्मेलन में एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अंटिल 2035 समेत 24 दस्तावेजों को मंजूरी दी गई।
भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना, लेकिन सदस्य बनने के कुछ ही वर्षों बाद भारत ने संगठन की अध्यक्षता भी संभाली। सितंबर 2022 से जुलाई 2023 तक भारत ने पहली बार एससीओ की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता का प्रमुख संदेश था टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। सिक्योर यानी एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और ई फॉर एनवायरमेंट। अब सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ की रोटेटिंग चेयरमैनशिप संभाली। इसके बाद भारत की पहली अध्यक्षता के दौरान 134 बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठक शामिल थी। भारत ने अध्यक्षता के दौरान संगठन के एजेंडे में कुछ नए सहयोग क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाया। इनमें स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे क्षेत्र शामिल थे। भारत की अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू था एससीओ सहयोग को केवल सरकारों के बीच संवाद तक सीमित न रखना। इसके लिए संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को भी महत्व दिया गया। वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ की पहल कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया। वाराणसी में एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मार्च 2023 में एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग और टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक भी वाराणसी में हुई। इन बैठकों में एससीओ टूरिज्म ब्रांड को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और मेडिकल तथा हेल्थ टूरिज्म में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पर्यावरण भी भारत की अध्यक्षता के प्रमुख क्षेत्रों में रहा। अप्रैल 2023 में एससीओ देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने मिशन लाइफ और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने सहयोग पर जोर दिया। एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में स्वास्थ्य सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था, संयुक्त शोध और आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत की अध्यक्षता का समापन 4 जुलाई 2023 को हुआ एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट के साथ। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने तथा डिजिटल परिवर्तन में सहयोग से जुड़े संयुक्त वक्तव्य भी जारी किए गए।
25 वर्षों की एससीओ यात्रा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा से हुई, लेकिन समय के साथ ये बहुआयामी क्षेत्रीय सहयोग के एक बड़े मंच में बदल गया। और इसी बदलते परिदृश्य में भारत की भूमिका एक ऐसे सदस्य देश की है जो सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, तकनीक, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को भी क्षेत्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण आधार मानता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।